دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 41 سے 64 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں. کب ہجرت کی؟ من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے, ہمیں جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا تو انہوں نے ہجرت کی. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو, فِي الدُّنْيَا حَسَنَا, دنیا میں بھی اچھا, وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے, ہم پہلے جو پہلے پڑھ چکے ہیں, آپ نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل میں دیکھا, توحید کے دلائل بھی آئے ہیں اس کے اندر, اور انسان کا آخری انجام بھی آیا. اور چونکہ یہ مکی صورت ہے, آپ دیکھیں گے اس میں ہجرت کی بات ہو رہی ہے, اور ہجرت کی بات یہاں پہ کون سی ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ہجرت جو کہ حبشہ کی طرف کی گئی تھی, اور ہجرت کا جو انعام ہے اللہ کی طرف سے, وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بتایا جا رہا ہے. ہجرت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہجرت ویسے تو ہجرت پرندے بھی کرتے ہیں, پرندے بھی ایک سیزن میں سردیاں آتے ہیں تو گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں, گرمی آتی تو ٹھنڈے علاقے کی طرف آ جاتے ہیں, تو پرندوں کی بھی ہجرت ہوتی ہے, اور بھی جانور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں پورے اپنے ہرڈز کی صورت میں. انسان بھی ہجرت کرتے ہیں, جب آپ کہیں مثلا تعلیم کے لیے گئے, جاب کے لیے گئے, لیکن جس ہجرت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے اللہ کی خاطر ہجرت, اس کے دین کی خاطر ہجرت. اسی لیے آیا ہاجروا فی اللہ, اللہ کے راستے میں ہجرت کی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی کہیں, اب ہم جاب کے لیے اگر یہاں پہ آئے ہیں یا ہم دنیا کی کوئی ایجوکیشن لینے کے لیے یہاں پہ آئے, تو یہ ہماری ہجرت نہیں ہو گئی. یہ ہے فی اللہ, اللہ کے راستے میں جو ہجرت کریں. اور کس وقت یہ ہجرت ہوتی ہے؟ من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے, یعنی اس قدر ان کے اوپر سختیاں آئیں, اتنا ظلم کیا گیا کہ اب اس کے بعد ایک ہی چارہ رہ گیا کہ یا تو اس دین کو چھوڑ دیں اور یا پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے جگہ چھوڑنی, وطن چھوڑنا گوارا کیا, لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. یہ تھی ان کی ہجرت. اور دیکھیں ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں انسان اپنا ملک بھی چھوڑتا ہے, اپنے رشتے دار چھوڑتا ہے, اپنا گھر بار چھوڑتا ہے, اپنی جو بھی ایفیلیشنز ہیں اس جگہ سے, اپنی یادیں ہیں, وہ سب چھوڑتا ہے. لیکن انہوں نے سب چھوڑنا گوارا کر دیا, اس لیے کہ دین نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور یاد رکھیں ہجرت کرنے وقت سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اب پھر میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا, کیا ہوگا. ظاہر ہے جاب چھوڑ رہے ہیں, گھر چھوڑ رہے ہیں, جائیدادیں چھوڑ رہے ہیں, رشتے ناطے چھوڑ رہے ہیں, دوست احباب یہاں رہ جائیں گے, جاننے پہچاننے والے یہاں آئیں گے, اتنے کانٹیکٹس ہیں میرے, اتنے تعلقات میں نے بنائے ہوئے یہاں پہ, 10 لوگوں کو میں یہاں پہ جانتی ہوں, تو میں پھر کیسے جا کے کہیں اور رہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انعام بتایا کہ جو میری خاطر ہجرت کرے گا نا, تو اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ پھر اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا فلسطین, حالانکہ کیا تھے, خالی ہاتھ نکلے تھے بالکل. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت صہیب رومی ہیں, اور حضرت خباب, عمار اور بلال, ابو جندل بن سہیل جو حدیبیہ کے موقع پہ آئے تھے چینڈ, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. مگر مطلب جو بھی مسلمان ایسے ستائے جائیں وہ سبھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو حضرت سہیل کے بارے میں بتا دوں, ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے, اور یہی کنیت ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اور ان کو صہیب رومی اس لیے کہتے تھے کہ جب چھوٹے ہی تھے تو ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا, اور روم میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی, اور پھر ان کو کسی نے خرید لیا اور مکہ میں لے آئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کر دیا, اور حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے. इनसे पहले सिर्फ अभी 30 लोग मुसलमान हुए थे। तो ये उन कमजोर लोगों में से थे जिनको इस्लाम लाने की वजह से इतना सख्त टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि जाहिर है जब कोई गुलाम है फिर तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है कि जो मर्जी आके जिस तरह से भी मर्जी सताए और मारे, और अगर मर भी जाएंगे तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं थी जिसके अंदर जाके कोई कह सके कि ये बेचारा इसको मार दिया गया। गुलाम की कोई भी जिंदगी नहीं थी। और जब ये हिजरत करने लगे तो मुशरिकीन की एक जमात ने इनका पीछा किया, और ये अपने जो इनका आका था उसके समझ ले मैनेजर थे, बिजनेस मैनेजर। तो इन्होंने अपने तीर निकाले और कहा एक कुरैश के लोगों, तुम जानते हो मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तीर अंदाज हूँ, और अल्लाह की कसम तुम्हें से कोई शख्स इस वक्त तक मेरे करीब भी नहीं आ सकता जब तक मेरे तरकश के सारे तीर खत्म ना हो जाए, यानी मैं सारे तीर चला दूंगा, फिर मेरे हाथ में तलवार है और मैं आखिरी दम तक तुम सब से तलवार के साथ मुकाबला करता हूँ, और अगर तुम्हें मेरा माल चाहिए तो मैं अपने माल का पता बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम यहाँ पे आए, खाली हाथ आए थे हमारे यानी मुल्क में, मक्का में, शहर में, तो अब तुमने यहाँ पे रहना, एज लॉन्ग एज तुम यहाँ रहते हो तब तक तुम अपना माल रख सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे नहीं रहना तो तुम ये माल लेकर नहीं जा सकते कि जो है तुम माल ले जाओ, तुम्हें अपने माल का पता बताना होगा, वो माल यही रहेगा, यानी खाली हाथ जाओ। तो उन्होंने अपने माल का पता बता दिया, मेहनत की कमाई की हुई इतने सालों की, और जब मदीना पहुंचे तो वहां पे सहाबा कराम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको देख के, अबू याहिया तूने तिजारत में नफा हासिल कर लिया, और अल्लाह ताला ने इनके बारे में सूरह बकरा में आयत नाज़िल फरमाई थी, वमिन अन्नासि मन यश्री नफ्सहु बिग़ौरा मरदातिल्लाह 207 आया, कि लोगों में कुछ लोग हैं जो अपनी जान अल्लाह की रजा की खातिर बेच देते हैं। इन्हें इतना बड़ा मकाम दिया गया इनकी इस हिजरत को। तो अहले मक्का जो थे वो ये चाहते थे कि या तो यहाँ पे रहें तो फिर इस्लाम को छोड़ दें, कुफर की तरफ आ जाएं, या फिर अगर जा रहे हैं तो फिर जाएं, लेकिन कुछ लेकर नहीं यहाँ से जा सकते। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, अगर यहाँ से जा भी रहे हो तो कुछ नहीं होता, दुनिया की भी मैं हसना दूंगा, मेरे लिए जो हिजरत करेगा। तो क्या याद रखिए, अल्लाह ताला किसी का रखता नहीं है, आपकी कोई जरा सा आपकी खातिर कुछ करे तो आप कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं इसको कोई तोहफा दूं, कोई चीज दूं, क्या करूं इसके लिए, थोड़ा सा कोई आपका काम कर दे, थोड़ी सी आपकी मदद कर दे, थोड़े से आपके लिए कुछ कर दे, आपका दिल चाहता है ना। और अल्लाह की खातिर कोई कोई चीज भी कुर्बान करे, कुछ छोड़े, तो क्या मेरा रब उसकी कुछ रखेगा। हम इतनी गैरत रखते हैं कि हम कहते हैं कि हाय नहीं, इसको मैं कुछ ना कुछ दूं, तो रब क्या ऐसे ही छोड़ देगा। उसकी खातिर चाहे आप वतन छोड़ें, वतन की कुर्बानी दें, चाहे आप अपने वक्त की कुर्बानी दे रही हैं, चाहे आप अपने माल की कुर्बानी दे रही हैं, चाहे आप अपने रिश्तों की कोई किसी तरह से कुर्बानी दे रही हैं, याद रखें कहीं जाया नहीं जाता, रब किसी का नहीं रखता, वो बढ़ा चढ़ा के देता है। और वाकई ऐसा हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कैसे आए हैं मक्का छोड़ के, ये बिल्कुल खाली हाथ लूटे फूटे, और फरमाते हैं खुदा की कसम अल्लाहु अकबर, मट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाती है। और उन्होंने आके क्या कहा था अपने अंसारी भाई से, तो बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। अंसारी भाई ने कहा मेरे घर का भी आधा तुम्हारा, इसका भी आधा तुम्हारा, मैं मेरी दो बीवियां को तलाक दे देता हूं, तुम शादी कर लेना। उन्होंने फरमाया नहीं, मुझे नहीं किसी चीज की जरूरत, आप मुझे बाजार का रास्ता दिखा दे। कुछ नहीं लेकर आए थे, और देखो कुछ अरसे में कैसे माला माल हो गए कि उस इलाके में, इसी मदीना में, आप सोचे ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं 20 साल के अंदर अंदर का बता रही हूँ आपको, 20 साल के अंदर अंदर के अरसे में ही कोई जकात लेने वाला नहीं रह गया था। तो आप जब कोई चीज अल्लाह के लिए दे रहे होते ना या कुर्बान कर रहे होते, घबराया ना करें, दिल थोड़ा ना किया करें कि हाय इतना वक्त लगा दिया, मेरा तो इतना टाइम चला गया, हाय मेरे तो ऐसे, तो किसके लिए लगा रहे हो, उसने रखना नहीं है, वो बड़ा गयूर है, बड़ी गैरत है उसको, वो रखेगा नहीं, देगा, तो बढ़ा चढ़ा के देगा, बहुत कुछ देगा। लोग पूछते हैं टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये सोचें कि जो अल्लाह के लिए टाइम निकाल रहा होता है, क्या अल्लाह उसके वक्त में बरकत ना देगा? क्या अल्लाह बढ़ा चढ़ा के ना दे देगा? क्या अल्लाह उसकी काम ना समेट देगा? तो हमेशा इस चीज को जहन में रखते हुए अल्लाह ताला के लिए जब कुछ लगाने लगे ना, ये इंसान है कि जिनके लिए आप लगाएंगे तो कुछ नहीं है, वो पता नहीं कुछ समझे भी कि नहीं समझे, जो अल्लाह के लिए लगाता है वो ना घबराए। जो अल्लाह के लिए कुछ लुटाता है तो अल्लाह भी उन पे लुटाता है। तो ये हिजरत करने वालों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह दुनिया में भी हसना देगा उनको, और अल्लाह ने दी दुनिया में हसना, अच्छा ठिकाना भी उनको दिया। क्या वहां पे टॉर्चर सह रहे थे? मदीना में आए, मदीना वालों ने कैसे इज्जतें दी, कैसे इस्तकबाल किए, ये तो आपने सीरत में देख लिया कि उनके तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। अंसार ने कैसे दिलो जान बिछा दिया, दिलो जान ही नहीं, अपने माल अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि नहीं बस, चाहे खुद के पास कुछ भी नहीं था, जो है बस उसी के अंदर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने ठिकाना दिया और फिर इतना मालोमाल कर दिया कि फिर यही लोग हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं कि तिजारती काफला आया है, सुभान अल्लाह, 700 ऊंटों पे गेहूं आटा और दूसरी चीजें रखी हुई, और इतना बड़ा काफला था ये 700 ऊंट, आप इमेजिन करें 700 ऊंट लाइनों में चले आ रहे हैं, आपकी तो 700 गाड़ियां भी नहीं यहाँ पे इतनी चल सकती, इतनी आ सकती कि आपने शायद कटी देखी हूँ ऐसे 700 ऊंट, उनके ऊपर ये सब चीजें लदी हुई है और शोर मच गया इस काफले का मदीना में। तो आयशा ने सुना तो फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया था अब्दुर्रहमान जन्नत में रींगते हुए जाएंगे, अपने माल की कसरत की वजह से, क्योंकि हिसाब किताब बहुत है ना। अल्लाह तो फरमाया, जब इनको ये पता चला, फरमाया मैं आपको गवाह करता हूँ ये पूरा काफला सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में वक्फ है, कैसे जन्नत में रींगता हुआ जाऊंगा। तो हसना मिली इनको दुनिया की, और लेकिन ये बात है कि ये नहीं कि जाते ही वहां पे, अब हमारे जैसे इतने थोड़बेले होते ना, इधर कुछ देते हैं तो साथ ही आए दिल घटना शुरू हो जाता है, अब कुछ मिला तो है नहीं है, ये तो हमें ये वादे किए हुए थे, ये तो कुछ नहीं मिला। याद रखिए इन्होंने फिर खंदकें भी तो खोदी थी, फिर उस वक्त मुनाफिक कहते थे ना कि हाय इन्होंने तो हमसे वादे किए हुए थे वो रूम और फारिस के, लो जी अब तो हम बाथरूम तक जाना हमारा मुश्किल हुआ है। तो ये थोड़बेले नहीं थे, अल्लाह ने आजमाइश ली, वाकई हिजरत की है मेरी खातिर की है ना, तो अप्रूव करके दिखाई, इन्होंने खंदकें भी खोद के दिखाई, कुछ टाइम लगा, मगर अल्लाह ने फिर वो मकाम और दर्जे दे दिए कि आधी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत हो गई, 3 बड़े आजमों पे, 3 कॉन्टिनेंट्स पे। तो थोड़ा सा उसके अंदर सबर की जरूरत है, आगे यही बात आएगी, थोड़ी सी सबर की जरूरत है। खंदकें खोदते वक्त इन्होंने ये नहीं कहा हमसे तो वादे किए थे कि दुनिया की हसना मिलेगी, ये क्या बात हुई, ये तो कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह के वादे ऐसे ही थे, धोखा था ये मुनाफिकीन ने कहा, वो भी थोड़े दिले होंगे ना, उन्होंने ये कल हो ये हुआ तो कुछ भी नहीं, तो हम चाहते इस हाथ दो उस हाथ लो, इस हाथ से दे तो उस हाथ से अल्लाह हमें फौरन वापस कर दे, और जिस दिल घटका रहता है कि अभी तक वापस नहीं मिला, पता नहीं राखी ना ले। अल्लाह के बारे में ना ये ऐसे गुमान किया करो, जब देते हो तो पूरे यकीन के साथ दो, चाहे आप माल दे रहे हो, चाहे आप वक्त दे रहे हो, चाहे आप सलाहियतें दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, चाहे आप ये आपको हिजरत करनी पड़ रही है किसी जगह पे रहते हुए, अगर कोई इंसान फराइज वाजिबात अदा ना कर सके, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ना चल सके, तो वहां से हिजरत करना लाजिम हो जाता है। अब हिजरत करो, घर बार को छोड़ दो, इस जगह मुसलमान जो है ना वो जमीन के साथ चिमटा हुआ नहीं है कि हाय हाय ये मेरा कंट्री है, मैं तो इससे कैसे जाऊं, मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पे मुझे ये सहूलतें हैं, मैं कैसे ये जगह छोड़ूं। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, कोई आसान नहीं था उस जमाने में भी अपने कबीले को खासतौर पे छोड़ना, जो कबीले को छोड़ देता था तो वो तो बिल्कुल बेसहारा हो जाता। तो ये ना समझे कि उनके लिए तो आसान था, आज के वक्त में बड़ा मुश्किल है, नहीं आज भी अगर किसी जगह पे रहते हुए ये मुमकिन नहीं रहा कि वहां पे दीन पे चला जाए। अब इसको नामुमकिन को प्लीज कोई ये ना समझे कि वहां पे लोग बातें मनाते हैं और वहां पे लोग जो है ना हमें ताने देते हैं और लोग हमें ऐसी देखते हैं, तो ये बस जुल्म हो गया। जुल्म ये नहीं है, यानी वहां पे अल्लाह के दीन पे चलना नामुमकिन हो जाए, ऐसे लॉज बना दे वो, मसलन आप हिजाब आपको ले ही नहीं सकते आप या आप इस तरह से रह ही नहीं सकते, आपकी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी या ऐसी चीज को कर दी जाए, तो फिर नहीं रहना वहां पे, फिर छोड़ देना उस जगह को, क्योंकि मुसलमान जगह छोड़ सकता है, दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो फिर फिक्र ना करो, फिक्र क्यों करते हो तुम, दुनिया की फिक्र ना करना, अल्लाह ताला फरमाते मेरे जिम्मे है ना, मैं दूंगा, क्यों परेशान होते, देख नहीं रहे उनकी मिसालें पिछले लोगों की, कैसे अल्लाह ने उनको इनायत फरमाया। इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक दिन हम सूरज निकलने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपने फरमाया अन करीब कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग उठेंगे जिनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हमने कहा या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे, आपने फरमाया फुकरा मुहाजरीन, जिनके जरिए से मुसीबतों का तहफ्फुज किया जाता था, नहीं मुसीबतें नहीं लोगों पे आती थी उनकी वजह से, और अपनी हसरतें और तमन्नाएं सीनों में ही लेके दुनिया से चले गए। अनेक कुछ लोग भी इस तक पहुंचे ही नहीं, आपको पता है कि मुहाजरीन में भी कुछ लोग बदर के अंदर या ओहद के अंदर तो बहुत सारे शहीद हो गए थे, उन्होंने तो देखा ही नहीं अच्छा वाला टाइम, तो वो हसरतें लेके ही दुनिया से चलेगा। क़यामत के दिन ऐसे होंगे, ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ खितों से उठाए जाएंगे और इनकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी, इनका बड़ा दर्जा जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते, और इनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले से खोल दिए जाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम मेरी उम्मत के उन लोगों को जानते हो जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, वो फुकरा मुहाजरीन होंगे, क़यामत के रोज वो जन्नत के दरवाजों पर आकर दरवाजा खुलवाना चाहेंगे, दरबान सवाल करेंगे तुम्हारा हिसाब किताब खत्म हो गया, वो लोग जवाब देंगे हमारा किस चीज का हिसाब होगा, अल्लाह के रास्ते में हमारी तलवारें हमेशा उठी रहें, और उस वक्त उनके लिए जन्नत के दरवाजे जन्नत के दर्जे खोल दिए जाएंगे, और आम लोगों से 40 साल पहले ये मुहाजरीन दाखिल हो जाएंगे जन्नत, यानी इसलिए कि फुकरा मुहाजरीन थी ना, इन्होंने वो टाइम ही नहीं देखा कि जब इनको दुनिया की हसना मिल जाए, दुनिया की अच्छा मिल जाए, दुनिया में सुकून है आसाइश है या आराम है, ये उन्होंने देखा ही तो फुकरा ही रहे। तो इन्होंने एक तो ये बात भी समझ ली कि इन्होंने जो हिजरत की ना, तो उसके बाद भी ऐसे नहीं इन्होंने कहा कि अच्छा अब हिजरत कर लिया ना तो अब क्या, अब हम तो कुछ और नहीं करेंगे, हिजरत ही हमारी बड़ी चीज हो गई, जैसे हम आज सोचते हैं बस एक काम कर लिया ना तो सोचते हैं कि बस अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने हिजरत करके भी देखें, जो मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का आपको बताया कि सदका कर रहे हैं 500 घोड़े और 500 ऊंट जिहाद के लिए, सदका कर रहे हैं, और घोड़े और ऊंट कोई यानी सस्ती चीज नहीं थी, और उनका सदका और हरात का हाल ये था कि बस यानी चलते चलते ही जाते जाते ही 30-30 गुलाम आजाद कर देते थे, और एक दफा उन्होंने अपनी एक जमीन 40,000 दीनार में फरोख्त की और सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए। यानी हिजरत करने के बावजूद, हालांकि हिजरत करना ही इतना बड़ा मकाम है कि जिसके बारे में ये खुशखबरी है, इसके बावजूद उनको फिक्र लगी रहती थी कि कहीं अल्लाह के हाँ मैं पीछे ना रह जाऊं, जन्नत में जाने का तो इनको भी वादा था, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी, दुनिया में ही मिल गई थी, लेकिन तुम्हारा सवाल होगा माल का, उनको ये रहता था कि कहीं मेरा कोई काम आखरत में मुझे लेट ना कर दे, डिले ना कर दे। और आप देखें कि आज हम छोटे छोटे काम करके कितने रिलैक्स हैं, कितना काफी समझते हैं। बाहर लोग मुझे देख के कहते हैं कि आपको क्या, आपको तो कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, یہ نادان کیا جانے کہ آخرت کتنی مشکل ہے. صحابہ دیکھو اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے, وہ تو کرتے ہی جاتے تھے, عذاب میں خندقیں کھود کے بھی پھر آرام نہیں کرنے بیٹھ گئے کہ اب بڑا کر لیا ہم نے, ہجرتیں بھی ہم نے کی, بدر میں بھی ہم شامل ہوئے, اوہد میں بھی شامل ہوئے, خندقیں بھی کھودی, اب یہ بھی کیا, اب بس آرام کریں. اب آخر آرام کے بھی تو کوئی دن آنے چاہیے, کوئی ویکیشن بھی تو ہماری ہونی چاہیے, کوئی ریلیکسیشن بھی تو ہونی چاہیے, بس ہر وقت ہم ایک ہی اس میں لگے. تو اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ تو دنیا کی ہے حسنہ, آخرت کا جو اجر ہے نا وہ تو اتنا بڑا ہے کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیوں اتنے بڑے بڑے اجر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے, انسان کو کئی تھاٹس آتے ہیں, کئی پریشانیاں آتی ہیں, کئی خدشات آتے ہیں. سب سے پہلے تو دنیا کے ہی اتنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی چیزیں پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں, کیا کریں گے, کدھر سے کریں گے, کیسے بنائیں گے, سب کچھ دوبارہ کھڑا کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو فرمایا لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. کیا جانتے ہوتے؟ کاش کہ جان لیں, کاش ان کو پتا چل جائے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے کتنا پیارا انجام رکھا اس کا. جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں اللہ ان کی کتنی قدردانی کرتا ہے, کاش یہ بات ان کو سمجھ آ جائے. اچھا ہم تو چلو اللہ کبھی ایسا موقع لے کر آئے کہ ایسے کوئی ظلم ہو کہ جو ہجرت کرنی پڑے, لیکن ہجرت برائی سے بھلائی کی طرف, نافرمانی سے اللہ کی طاعت کی طرف آ جانا یہ بھی ہجرت ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی قربانی کر لینا اللہ کی خاطر, جیسے میں نے کہا آپ اپنا وقت قربان کرتے ہیں یا آپ اپنی کوئی اور چیز قربان کرتے ہیں اللہ کی خاطر, اپنی کوئی مرضی, اپنی کوئی خواہش توڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر, آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا اجر آپ کے لیے رکھا. کاش کہ آپ کو پتا چل جائے, یہ دنیا میں نہیں پتا چل سکتا, یہ وہیں جا کے پتا چلے گا آخرت. اور حضرت عمر جو تھے نا, جب وظیفہ دیا کرتے تھے مہاجرین کو, بعد میں جب ان کا ٹائم امیر المومنین بنے تو یہ ظاہر ہے وظیفے مقرر ہوا کرتے تھے, تو ان کو جب دیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اس وقت خاص طور پہ کہ اللہ تمہیں برکت دے, یہ تو دنیا کا اللہ کا وعدہ ہے اور ابھی آخرت کا اجر باقی ہے جو بہت عظیم و شان ہے. پھر یہی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے, یہ دیکھو تمہیں مل رہا ہے نا, یہ ہے دنیا کا اجر, واقعی اللہ نے تمہیں اجر دیا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اس چیز پہ پریشان نہ ہوا کریں, کبھی بھی دے کے کس کو دے رہے ہیں یہ تو دیکھیں, اس کو حاجت نہیں کسی کی, وہ بے نیاز ہے. جب آپ دیتے ہیں وہ لوٹاتا ہے, یہ تو آپ کا صرف امتحان ہے کہ کون اللہ کی خاطر کیا دے سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہو, شرط یہ ضرور یاد رکھے تو ضرور اللہ قدر کرے گا. پھر نہ فکر کیا کریں, الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, یعنی کن کو یہ اچھا ٹھکانہ ملے گا دنیا اور آخرت کا, کاش وہ جان لیں, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر توکل کیا. یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے کے لیے یہ دو صفات بہت ضروری ہیں, ایک صبر اور ایک توکل. دیکھیں صبر ہوگا ہی تو انسان کہے گا نا کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اگر اللہ کی خاطر یہ چھوڑ دی تو کوئی نہیں, صبر کرے گا, اپنے آپ کو تھام کے رکھے گا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی صبر ہی نہیں ہے, بے صبر ہے تو وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا کوئی جگہ. توکل کیا ہے؟ توکل یہ چیز ہے کہ انسان کو یہ بھروسہ ہو کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں, اگر میں نے اس کے لیے کچھ دیا ہے نا تو مجھے بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور اچھا ہی انجام کرے گا, اللہ ضرور اچھا لوٹائے گا, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ ہو کہ اللہ نے جب فرما دیے کہ دنیا میں بھی حسنہ دوں گا اور آخرت میں بھی, تو مجھے بھروسہ ہے. تو ہجرت کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ صبر اور توکل کا کیا تعلق ہے. لیکن جو انسان صبر ہی نہیں کر سکتا, یہ گھر بار چھوڑنے کے اوپر صبر کرنا ضروری ہے, دنیا کی لذتیں چھوڑنے پہ صبر کرنا ضروری ہے, اپنے رشتے دار چھوڑنے پہ صبر ضروری ہے, ان سب چیزوں کے لیے صبر ہی چاہیے نا, تبھی انسان چل سکتا ہے. اور اللہ کی فیوچر کے لیے کیا، اللہ پہ بھروسہ، بھروسہ ہوگا تو انسان پہ تکلیفیں بھی برداشت کر لے گا، بھروسہ ہوگا کہ ہاں اللہ دے گا. تو یہ تو خیر میرا خیال میں ہر ایک نیکی کا کام کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، صبر بھی اور توکل بھی، جتنے نیکی کے کام ہیں. اب آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس میں بھی صبر چاہیے، کیا آپ اپنے آپ کو جما کے رکھیں. اب جن میں صبر نہیں ہوتا وہ آتے ہیں، چار دن آئے اس کے بعد بے صبری ہو کے بھاگ گئے. جن کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے اللہ کے اوپر، ان کا بھی یہی حال ہے، مستقل مزاجی نہیں. اب آگے فرمایا، اچھا اب کی جو آیتیں نا آگے، یہ آیت نمبر 43 سے 50 تک ایک ہی ٹاپک ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو ایک انسان کو کیسے رسول بنا کے بھیج سکتا ہے. تو یہاں پہ اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھیجا تو صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے رسول بنا کے، یعنی نہیں کسی کو بھیجا، مگر مردوں کا مطلب کیا، صرف مردوں کو ہی تو رسول بنا کے بھیجا ہے آپ سے پہلے بھی، کوئی آپ پہلے ہی دفعہ تو نہیں کوئی انسان رسول بن کے آیا، کوئی مرد رسول بن کے آیا، پہلے بھی رسول جو ہوتے تھے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے، مرد ہی ہوا کرتے تھے. نوحی الیہم، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، ان کی طرف وہیاں آئیں، ان کی طرف وہی کی گئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ پوچھ لیں بے شک، کس سے پوچھ لیں، اہل ذکر سے. اہل ذکر یہاں پہ کس کو کہا گیا، اہل کتاب کو، کیونکہ اہل کتاب بھی ظاہر ہے ان کے پاس ہسٹری تھی، علماء اہل کتاب جو تھے ان کو ساری ہسٹری پتا تھی، ان کے پاس کتنے پیغمبر آئے، پڑھا ہے نا آپ نے پہلے کہ بنی اسرائیل کے پاس کتنے پیغمبر آئے، ایک ایک وقت میں بہت سارے نبی ہوتے تھے ان میں، تو ان کو تو پتا ہے اچھی طرح کہ آپ سے پہلے جو آئے وہ کون تھے، وہ بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے نا، وہ جن یا فرشتے تو ہوتے نہیں تھے. تو ان میں اس میں کون سی اتنی انوکھی سی بات ہو گئی تمہارے لیے کہ تم کہتے ہو کہ رسول جو ہے وہ انسان کیسے ہو گیا، انسان تو رسول نہیں بن کے آ سکتا. تو دیکھو پرانے بھی سارے ہی پیغمبر انسان ہی تھے، چاہے تم جا کے ان سے پوچھ لو جن کے پاس اتنے رسول آئے کہ بھئی کون ہوا کرتے تھے. ابھی یہ وہ یہ بھی کہتے تھے تو آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، آپ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، پھر یہ کون سا رسول ہے. اصل میں ان باتوں میں بھی نا ایک قسم کا تکبر تھا، اس لیے کیونکہ اگر فرشتہ رسول بن کے آئے گا تو ٹھیک ہے فرشتے کو تو ماننا آسان ہے، لیکن اگر انسان رسول ہوگا تو اس کی بڑائی کو ماننا کہ یہ ہم سے اوپر ہے اور اس کے انڈر ہو کے رہنا یہ تو ہمیں نہیں پسند ہے. نہ یہ کل کا ہمارے سامنے کا چلتا پھرتا کوئی انسان ہے، یہ اب ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سے زیادہ اوپر ہے. پیغمبر ظاہر ہے سب سے سپیریئر ہو گیا نا، اس کی اتباع کرنے کی ضرورت تھی نا، یہی بات تو ان کو نہیں پسند آتی تھی، ہم کیسے اس کے انڈر ہو جائیں، اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں، اس کی اتباع کریں، اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں. وہ جو تکبر تھا وہ اندر سے یہ کرنے نہیں دیتا تھا، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہو کے اب اس کے آگے جھک جائیں، ہم اس کی مرضیوں کو مانیں، اس کے کہنے کو مانیں. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ ہی کا حکم لے کر آیا، ان کو دکھتا تو ایک انسان ہی تھا نا. ہمارے لیے آسان ہے اس لیے کہ ہم بچپن سے ایک چیز سن رہے ہیں، بچپن سے ایک چیز پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں بھی نہیں کہ ہمارا کوئی ایسا امتحان ہو، پتا تو تب چلتا نا کہ ہمارے سامنے ہو پھر اس کے بعد ہم اطاعت کریں. اب ہم بس گن گاتے رہتے ہیں تعریفوں کے اور اس کے بعد اتباع کرنے کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، فالو کرنے پہ کوئی توجہ نہیں. تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ کیا تھی، فالو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لے کر آئے ہیں بھائی جہاد کے لیے نکلو، بھائی ہجرت کرو، کوئی فلان چیز کرو، یہ کرو، اب کیسے ہم کر لیں، اب ان کا کہنا مانیں. اب جو نہیں مانے گا تو پھر تو صاف واضح بات ہے، یا تو منافق ہے، نہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتا. تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اس لیے بہانے بہانے سے نا کبھی کوئی بہانہ لے آتے تھے، کبھی کچھ اعتراض لے آتے تھے. تو کہا گیا آپ پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، جو اہل کتاب کے علماء ہیں، یہاں پہ اہل ذکر سے مطلب کیا، اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کو تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اور اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے याद रखें, जब भी अमूमी माना इसका लिया गया, उलमा ने इसका जो यानी जनरल माना लिया ना, वो ये कि जब भी आपको कोई चीज नहीं पता हो तो फिर क्या करना चाहिए, जाहिल ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इल्म वालों से पूछ लिया करें, आगे बढ़ के पूछ लें अहल जिक्र से, यानी इल्म वाले से। कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई चीज नहीं आप जानते, तो बजाय जहालत में पड़े रहने के या किसी ऐसे बंदे से पूछने के जिसको खुद भी नहीं पता, किसी इल्म वाले से जाके ये बात पूछ ली जाए। अच्छा, तो इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति वद्दुबुर, वो भी क्या लेकर आए थे, इसी की कंटिन्यूएशन, निशानियां लेकर आए थे, सहीफे लेकर आए थे, यानी पिछले रसूल में मोजाल लेकर आए थे, कुली कुली निशानियां लाए थे, किताबें या सहीफे उनके साथ स्क्रिप्चर्स भेजे गए थे। तो आपको तो चार ही किताबों का पता है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, लेकिन इसके अलावा स्क्रिप्चर्स भी आए हैं पैगंबरों के ऊपर, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो उनके पास भेजे गए, वह अनजलना इलैका ज़िक्र, और उतारा हमने आप पर अज़्ज़िक्र, अज़्ज़िक्र से मतलब क्या है, कुरान करीम, आपकी तरफ हमने कुरान करीम को उतारा, ली तो बय्यिना, ताकि आप बयान कर लें, किस लिए उतारा, ताकि आप बयान करें, बयान करने का मतलब क्या होता है, बात को क्लियर करके बता देना, खोल के बता देना। अब बय्यिना का मतलब क्या, खोल, खुली, बिल्कुल वाजे, वाजे कर देना, कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कोई जिसको हम कहते तफसीर या तशरीह करना, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल उसको, जैसे अभी हम कर रहे हैं एक एक आयत को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भाई अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये किसने शुरू की, ये किसने काम किया, अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान नहीं उतारा, बल्कि इसकी तशरीह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उतारी, कि ऐसे नहीं लोगों को समझ आ जानी थी कुरान करीम की जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तफसीर ना बयान फरमाते। तो ये हमने जिक्र इसलिए उतारा है ताकि आप लोगों को, आपके ऊपर इसलिए उतारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए उतारा, वरना किसी पहाड़ के ऊपर भी अल्लाह ताला कोई किताब लोग जाते और वहां पे मिल जाती, लोगों को उठा के पढ़ते रहते, वो तो अरबी जानते ही थे, हमारी तरह थोड़ी थे कि उनको नहीं पता होता, तो ये अरबी के अल्फाज जानने उनके लिए क्या मुश्किल थे, वो तो पोएट्री इतनी जबरदस्त करते थे। लेकिन जरूरत थी किसी की, किसी मुअल्लिम की, जो उनको सिखाता, जो उनके लिए खोल के बयान करता। मा नुज़िला इलैहिम, क्या नाजिल किया उनकी तरफ, क्या नाजिल किया गया उनकी तरफ, ये खोल के बताए उनको, ताकि आप उन लोगों के लिए बयान कर दें कि क्या उतारा है अल्लाह ने उनकी तरफ। माँ का मतलब यहाँ पे क्या भी है और जो भी है। अब क्या से मेरे ख्याल आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ क्या उतारा है, वो सब उनको एक्सप्लेन कर दें। इस एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, कुरान तो नहीं है वो, उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, हदीस, राइट, हदीस। आज वो हमारे पास, देखिए हमारे पास भी तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, हम भी तो कुरान पढ़ के, अब मैं बैठ जाऊं और कुरान की खुद ही से एक्सप्लेनेशन, अल्लाह ताला माफ फरमाए और इसे महफूज रखे, खुद ही से करना शुरू करते हैं, ये जायज नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे चीज एक्सप्लेन की है वैसे ही करनी चाहिए कुरान करीम की। तो उस चीज को अब हम क्या कहेंगे, अब देखे जो भी तफासीर भी रखी है, लिखी है और मुफस्सिरीन ने, वो किसकी रोशनी में लिखी, उसमें अहादीस लिखी गई, उस अहादीस को आगे एक्सप्लेन किया गया, उनकी शरह की गई। अब देखे जैसे बुखारी है, बुखारी की भी एक शरह है, उसकी भी तशरीह की गई है, यानी उन अहादीस को भी आगे के क्या मतलब इसका लिया गया, वो भी आगे बुखारी ने खुद भी शरह लिखी है। तो यानी ये देखे कि जो कुरान है वो एक चीज है और इसकी एक्सप्लेनेशन एक और चीज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए की, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन या तशरीह के बगैर हमें कुरान नहीं समझ आ सकता। ये मैं बात क्यों, क्योंकि लोग आजकल ये कहते हैं हम कुरान को तो मानते, हदीस तो जी बाद में लिखी गई, हमने इसको मानते। ओ खुदा के बंदो, तुम कुरान के ऊपर अमल करोगे कैसे अगर तुम हदीस को ही नहीं मानते, खुद सोचे ना। सबसे पहली तो ये बात है कि कुरान करीम के जो मजामीन है ये है, ये समझ आ ही नहीं सकते जब तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन दी भी आप ना देख लें। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया, आपको तो हमने इसीलिए तो आपके ऊपर ये किताब उतारी है ताकि आप इसको एक्सप्लेन करके दिखाएं, ताकि आप इसके मुताबिक अमल भी करके दिखाएं, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक यानी हुकूमत दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मदीना की एक रियासत दे दी, एक स्टेट ऑफ मदीना दे दी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया इस किताब के कवानीन को, कि रहती दुनिया तक कोई इंसान ये ना कह सके कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। सूद के बगैर दुनिया कैसे चल सकती, ये नहीं हो सकता। कोई ये ना कह सके ये आज तक इसका कोई नमूना दिखाओ इसके मुताबिक, ये तो थ्योरी है ना, इसका प्रैक्टिकल क्या, कोई इंसानों ने कभी किसी ने इसके ऊपर अमल किया, हो ही नहीं सकता इस पे तो अमल, कोई ये ना कह सके। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि नॉट ओनली कि आपने अपने वर्ड से इसको एक्सप्लेन किया, अपनी जिंदगी में वो करके भी दिखाया कि लोग देखेंगे भी और उससे भी कुरान की तफसीर हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, खदीजा ने क्या बयान फरमाया, क्या अखलाक था, कुरान, आप चलता फिरता कुरान थे, तो आपको देख के लोग जानते थे कि अच्छा कुरान की इस आयत पे ऐसे अमल करना। इसलिए एक तो ये बात हो गई, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हदीस को हम नहीं मानते, इनके लिए आप ये पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको किसी दिन ऐसा कोई बात कह देंगे, फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि अच्छा इनको क्या जवाब देना, मेरे से नहीं पूछना, आपने खुद जवाब देना। अब आप लोगों को इतने माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए, 14 पारे पे पहुंच गए, अब आपको खुद जवाब देना कि क्या इनको, जब उनको पूछें कि जब कुरान कहता है अकीमुस्सलाह तो सलात का जो माना है वो किसी डिक्शनरी से तो मालूम हो नहीं सकता, इसलिए कि डिक्शनरी में सलात का माना दुआ करना, या टेढ़ी लकड़ी को आग की हीट पहुंचा के सीधा करना, या सलात का माना बरकत भी है, लेकिन जब कहा जाता है कायम करो सलात तो कहां से पता करोगे तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही पता चलेगा ना कि इस तरह अल्लाह अकबर कहना है, ऐसे हाथ बांधने हैं, ऐसे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह सलाम फेरना, इसका जिक्र तो कुरान में है ही नहीं, अजान के कलिमात कहां से सीखोगे तुम, बताओ दिखाओ मुझे कुरान में कहां पे अजान के अल्फाज लिखे हुए, पांच नमाजों की कितनी रकतें हैं, ये तो कुरान में नहीं है ना, टाइमिंग्स एग्जैक्ट और किस वक्त स्टार्ट होता है टाइम और किस वक्त खत्म होता है एग्जैक्ट इस तरह से नहीं है, वुजू के क्या फराइज है ये भी कुरान में नहीं है, किन चीजों से टूटता है, हाँ वजू के फराइज जरूर है, हाँ वजू के फराइज जरूर है कुरान करीम में, मगर मसलन किन चीजों से टूटता है उसकी तफसील कोई नहीं है। अब ये अहादीस आपको माननी पड़ेगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो ना आप वजू कर सकते ना अजान दे सकते ना नमाज पढ़ सकते हैं। अब कुरान करीम में जकात का हुक्म है, ठीक है, लेकिन कितने माल पे, कितने अरसे के बाद कितनी जकात देनी, इसका नहीं है जिक्र, क्या निसाब बनता है, इसका नहीं है जिक्र, रोजा रखने का हुक्म है, ठीक है, रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से नहीं टूटता, इसका जिक्र कहां, हदीस देखनी पड़ेगी, हज और उमरे का हुक्म है कुरान के अंदर, लेकिन हज का तरीका क्या है वो कहां से सीखोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का तरीका करके दिखाया, फरमाया मेरे से हज सीख लो, और कितनी दफा जिंदगी में फर्ज है ये भी नहीं पता, चोर का हाथ काट दो लेकिन कितनी चोरी पे हाथ काटा जाएगा, हाथ किस जगह से काटा जाएगा एग्जैक्टली, हाथ काटने की क्या शरायत है, इसका जिक्र कुरान में नहीं। अब मतलब एक एक चीज को ले लें, विरासत का कुरान में जिक्र है, लेकिन किस किस के आगे जो जितनी ज्यादा इसकी रिश्ते और कितने क्या मतलब डिटेल आ जाती है वो जिक्र नहीं है, तो आप किस किस उसमें आप कहेंगे कि कुरान को हम ले लेते हैं लेकिन हदीस को नहीं लेंगे, कैसे कह सकते हैं, और फिर कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, मैं युती रसूल फकद अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वमा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें दिया रसूल ने वो ले लो, जो जिसे मना किया उसे रुक जाओ। अब देखिये, अब मुझे बताएं इसको वो लोग कैसे इन आयतों के ऊपर चलेंगे, इन पे अमल करेंगे, एक नहीं है इस तरह की बहुत सारी आयतें। अब अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अज़ाब में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन इस रसूल को बेस्ट एग्जांपल बनाया, ये नमूना बनाया तुम्हारी जिंदगी के लिए। अब नमूने को अब ठीक है, सहाबा कराम के तो सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने तो नमूने को देख के उस तरह से जिंदगी गुजार ली कि भाई हाँ ये एग्जाम्पल है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, हम कैसे गुजारेंगे ये बताएं, अगर हम हदीस को नहीं मानते, बिलफर्ज़ अल्लाह ताला माफ फरमाए इस चीज से, लेकिन कोई हदीस को अगर नहीं मानता क्या कैसे वो इन आयतों पे अमल करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया आले इमरान कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इनको कह दो कि मेरा इत्तेबा करो, तो कैसे करोगे इत्तेबा, किसको देखोगे बता, पता है कौन कौन है यहाँ पे जिसको देखेंगे आप, कहेंगे हम रसूल का इत्तेबा कर रहे हैं, हदीस की तरफ जाना ही पड़ेगा ना, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتہ چلے گی، جو آپ کی حدیث ہے، سیرت ہے، وہاں پہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ نے کیسی چیزوں کو امپلیمنٹ کیا، آپ نے کس چیز کے بارے میں کیا فرمایا. اس کے بغیر تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ آپ کس طرح سے لیں گے. اور اگر آپ ریجیکٹ کر دیتے حدیث کو تو پھر کس چیز سے آپ یہ ساری عبادات، آپ کی پانچ ارکان اسلام کے نہیں پورے ہوتے اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ایسے ہی نہیں قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا، بلکہ تاکہ لوگ اس سے صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے بھی اور اپنی پریکٹیکلی عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھا سکیں گے کیسے اس قرآن کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، اس آیت کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، کس طرح اس کو عمل میں لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ تو عمل کی کتاب ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن اور اس جیسی ایک چیز دی گئی ہے. سمجھے، مجھے قرآن اور اس جیسی ایک چیز دی گئی. وہ اس جیسی چیز کیا ہے؟ وہ سنت ہے، جس کو حدیث کہیں سنت کہیں ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام ہے، تو سورہ نجم میں غالبا آیا تھا نا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرح سے کرتے ہیں، مطلب کہ خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں پیغمبر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ لوگوں کی کتابیں نہیں ہیں، فلانے کی کتاب، فلانے کی چیز، وہ تفسیریں نہیں ہیں، قرآن اور سنت. اور جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو لیں گے اور سنت کو چھوڑ دیں گے، آپ خود دیکھ لیں کہ پھر دو چیزیں جو تھامے گا نا صرف وہ نہیں گمراہ ہوگا، اور جس نے ایک چیز کو چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا، پھر خود ہی من مانیاں کرتے رہو، جو مرضی یہاں پہ اچھا صبر کا معنی کچھ نکال دو، ہجرت کا کچھ اور کر لو، ربا کا کچھ اور کر لو، صلات کا کہہ دو، دعائیں کرتے رہو، بس یہی تمہاری صلات ہو گئی، اور اس کا مطلب یہ کر لو، اس کا جو مرضی بھی کرتے رہو، خود ہی انٹرپریٹ کرتے رہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ سمجھنے کی، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو بھی ان کے لیے اتارا گیا ہے، کیا کچھ ان کے لیے اتارا گیا، وہ سب آپ ڈیٹیل میں بتا دیں، اپنے اسوہ سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. غور و فکر کرنا کیا ہے؟ تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا. یہ دیکھیں، یہ اس کا مطلب قرآن کریم عبادت کے طریقے ہی نہیں صرف سکھاتا، غور و فکر بھی سکھاتا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا نا غور و فکر کرو. غور و فکر بھی بغیر علم کے نہیں آ سکتا. اب ہم پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی دیکھتے ہی تھے آسمان کو، زمین کو، چرند پر، ان درختوں کو، کہ بڑا کیا غور و فکر ہم کرتے تھے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے تھے. اچھا آسمان ہے تو ٹھیک ہے، اچھا سورج ہے تو ٹھیک ہے. اب جب قرآن نے ہمیں یہ روشنی دکھائی تو اب ہمیں غور و فکر کا طریقہ بھی سکھایا. اور جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا اتنا ہی انسان کی ہر چیز کو دیکھنے کی جو نظر ہے نا وہ بدل جاتی ہے. اور انسان چیز کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اس سے چیزیں نکالتا ہے، اس سے اپنے لیے سبق نکالتا ہے. تو قرآن اس ڈائریکشن میں انسان کو لے کر جاتا ہے کہ وہ سوچے، وہ غور کرے، وہ تدبر کرے. جانوروں کی طرح ہی نہ چلتا پھرتا رہے، جانور بھی چل رہے ہیں زمین پہ، ان کو نہیں پتا کچھ بھی کہ کیا ہے کیا نہیں. تمہیں اللہ نے عقل دی ہے نا، غور و فکر کرو. اور یہ چیز صرف انسان کر سکتا ہے، باقیوں میں تو یہ وہ ہے ہی نہیں، اتنی عقل، اتنا علم، وہ تو بےچارے غور و فکر نہیں کر سکتے. تمہاری تو عقل ہی اس لیے نا، ورنہ دیکھتے تو جانور بھی ہیں، اس کو نہیں نظر آتا کہ سورج نکل رہا ہے، گائے بھینس کو، ان کو پتا ہے کہ دن نکل رہا ہے، چڑیوں کو پتا ہے کہ صبح صبح وہ آپ سے بھی پہلے اٹھی ہوتی ہیں، چہچہا رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ لیکن تم غور و فکر کے ساتھ عقل استعمال کر کے کرتے ہو، تو اس کو یوز کرو. مگر آپ نے دیکھا غور و فکر کا سٹیج کب آیا؟ اینڈ میں. پہلے کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل کیا، یعنی پہلے ذکر کو سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم اور تشریح کو سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج پہ یہ آیا کہ پھر غور و فکر کرو. اس کے بعد ہی کرو گے. اگر آپ نے कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आप कह रहे मैं जी बैठी गौर फिक्र कर रही हूँ, वो नहीं गौर फिक्र, किस चीज का गौर फिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह, जब लोग कहते हैं ना हमें जी सब पता है, हमें नहीं मिला नमाज पढ़नी आती, क्या आप हमें क्या कुरान में सिखाएंगे, सब पता है हमें, तो हमारी तो इंसान है ना, हमारी तो जहालत का ये हाल है, हमें तो गौर फिक्र भी नहीं करना होता था। पता क्या है, जब इंसान इस कुरान की तरफ आता है तो पता चलता है कि हम तो सबसे ज्यादा जाहिल थे। ये जो जितना जाहिल होता है ना, वो ही अपने आप को इतना इल्म वाला समझता है। जितना कोई इल्म पाता जाता है वो तो उतना ही झुकता चला जाता है, वो कहता है मैं तो सबसे बड़ा जाहिल हूँ। इल्म के खजाने तो वो हैं कि इंसान उनकी डेस्क तक पहुंच ही नहीं पाता, ये तो वो इल्म है। जब किसी की आप जुबान से सुनते मुझे सब पता है, मुझे नहीं कुछ बताने की जरूरत, समझ जाए कि ये बहुत जाहिल है। अफा आमिन अल्लज़ीन मकरु सय्यात, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अब ये जो नई लोग मान रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानते, क्या ये अपने आप को अमन में महसूस करते हैं, क्या ये बेखौफ हो गए? वो लोग कौन से लोगों को कहा गया कि वो बेखौफ हो गए? मकरु सय्यात, जिन्होंने बुरी चालें चली, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चालें चल रहे हैं, कभी आपको कत्ल करने की साजिश तो एंड में हुई थी, उससे पहले तरह तरह के प्रोपेगेंडास करते थे, तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते थे, तरह तरह की साजिशें करते थे, धमकियां देते थे, क्या क्या नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ये बेखौफ हो गए, इनको डर नहीं लगता कि ये अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए, कि अन यख्सिफ अल्लाह बिहिम अल-अर्ज़, कि अल्लाह इनको जमीन में धसा दे, इनको डर नहीं लगता इस बात से, बिल्कुल बेखौफ हो गए ये। यानी ये उस वक्त की आयत है जब अभी अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये सारी प्रोपेगेंडा करते, क्योंकि ये मक्की सूरत है ना, और सहाबा कराम पे जुल्म करते थे, टॉर्चर करते थे, अल्लाह ताला उस पे फरमा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये एक मामूली बात नहीं है, अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ साजिशें करना, जो अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ चालें चलता है तो जाहिर है मकसद तो यही होता ना कि अल्लाह के रास्ते से हटा दे। तो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का मैसेंजर है, अल्लाह का एम्बेसडर होता है, वो तो अल्लाह के खिलाफ ही खड़ा हो गया जिसने उसके पैगंबर से दुश्मनी ली। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या ये बेखौफ हो गए, क्या इनको डर नहीं लगता? अल्लाह का डर खत्म हो जाए तभी कोई इंसान इस हद तक पहुंच सकता है कि अल्लाह के दीन पे चलने वालों के खिलाफ साजिशें करें। याद रखें, अल्लाह के दीन पे चलने वाले उसको बर्दाश्त ना हो, ये तभी हो सकते हैं जब उसके अंदर अपने अंदर अल्लाह का खौफ ना हो। तो फरमाया उनको ये नहीं बात समझ आती कि अल्लाह चाहे तो बैठे बिठाए जमीन फट जाए और उसके अंदर चले जाए। आप देखते हैं कई दफा यहाँ पे, पहले एक कुछ साल पहले की बात है, एक न्यूज आई थी कि जमीन फटी है और कोई लड़का सोया हुआ था अपने बिस्तर के ऊपर, तो वो जमीन के अंदर चला गया। उन्होंने कहा कि पता नहीं उसका नाम क्या होता है, भूल गया नाम क्या होता है, कि वो जमीन में एक होल हो जाता है, उसके अंदर चले जाते हैं, सिंक हो जाती है जमीन वहां से। इसी तरह आपने देखा हमारे मुल्क में जब जलजला आया था बहुत बड़ा, तो उस वक्त भी क्या हुआ था, वहां पे जमीन फट गई थी और घर पूरे के पूरे अंदर चले गए थे। अल्लाह चाहे तो जमीन फट जाए, अल्लाह ने दिखाया भी है। कारून इतने खजानों समेत अपने, जिसको देख के लोग कहते थे कि काश हमें भी इस तरह का मिले, तो उसको अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा दिया था। जी जज़ाकअल्लाह खैर, सिंक होल उसको कहते हैं। तो जमीन यानी बैठे बैठे कोई है और अल्लाह ताला माफ फरमाए, इसे महफूज रखे, जमीन के अंदर धंस जाता है, मर जाते हैं फिर लोग इस तरह। तो वो सोया सोया ही जमीन के अंदर चला गया था। शायद आपने कभी इसकी वीडियो या कभी देखी हो, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो आज भी ऐसा होता है, ये इंसान है जो बेखौफ हो जाता है, सोचता है जमीन पे अकड़ के चलूं या जैसे मर्जी चलूं, अल्लाह वालों के खिलाफ साजिशें करूं या जो मर्जी करूं, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सबक लो कारून से। और यातियहुमुल अज़ाब मिन हैथु ला यशऊरून, यहां तुम्हारे पर अजाब वहां से आ जाए, इनके पास अजाब कि जहाँ से वो शऊर भी नहीं रखते, इतना अचानक आ जाए कि इनको पता भी ना चले कि हम अजाब आने लगा है, बिल्कुल बेखौफ बैठे हो, अजाब ऐसी जगह से पहुंच जाए। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी चीजों की न्यूज आप आए दिन देखते हैं, ऐसी जगह कहीं सुनामी आ गई, कहीं जलजला आ गया, कहीं कुछ हो गया, एक अल्लाह का कुन कहना होता है, बस्तियों की बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज तो हम ठीक है उन जगहों पे नहीं भी गए हो तो ये न्यूज में ही हम इतना कुछ देख लेते हैं। तो वार्न कर दिया गया सबको कि किसी वक्त भी अल्लाह से बेखौफ ना होना, अल्लाह चाहे तो इसी जमीन पे जिसपे तुम बड़े मजे से घूमते फिरते हो किसी को तुम्हारी मौत का सबब बना दे। अल्लाह की जात तुम्हारे पर काबू रखने वाली है तो बेखौफ ना हो जाए करो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। इंसान क्या चाहता है, मुझे कोई खौफ ना रहे, और अल्लाह चाहता है कि तुम डर डर के रहो, डर डर के कदम उठाओ। हम नहीं चाहते ना कि हम खौफ ज्यादा हों, कभी भी नहीं चाहते कि हमें कोई डर हो, लेकिन ये डर पसंदीदा है, ये दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, जिसको खुदा का खौफ मिल जाए बहुत बड़ी दौलत है। इंसानों का खौफ तो आपको बुजदिल बना देता है, ना पसंदीदा चीज है, अल्लाह का खौफ वो अच्छी चीज है क्योंकि उसकी वजह से इंसान का अमल बदलता है। और फरमाया नंबर 3, देखिए दो चीजें हो गई ना, जमीन में धसा दिए जाए वो लोग, या फिर उनके ऊपर अजाब वहां से आ जाए कि जो उनका रिश्ता उसको कोई होश ही ना हो, पता ही ना हो, सोचा भी ना हो, अचानक से ही कोई चीज आ जाती है। औ याखुज़हुम, या पकड़ ले उनको, फी तक़ल्लुबिहिम, उनके जमीन पे चलते फिरते में, फमा हुम बिमुअजिज़ीन, तो नहीं वो आजिज कर देने वाले। यहाँ अल्लाह ताला उनको ऐसी हालत में पकड़ ले, जमीन यहाँ पे नहीं है लफ्ज़ तो इसलिए इसको काट ले, ऐसी हालत में पकड़ ले कि वो चल फिर रहे हैं। बस चल फिर रहे का मतलब क्या है, आप चलते फिरते कब है, कभी भी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, कब होता है, तो आप अपनी डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं, जब आप जॉब पे जा रहे हैं, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल कुछ जहन में होता नहीं है कि अच्छा मुझे को मेरी कोई पकड़ आ सकती है, कुछ ऐसा कुछ बुरा हो सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम चलते फिरते, मसलन जॉब से वापस आ रहे हो, जैसे ये घर शादी पे जा रहे हो, कहीं कुछ और फंक्शन पे जा रहे हो, बिस्तर पे पड़े हुए करवटे ले रहे हो, अब आपको बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह चाहे तो वहां पे ऐसी सूरत में तुम्हें पकड़ ले, जब दिन को काम कर रहे हो, दिन को भाग दौड़ कर रहे हो, चाहे तो वो उस वक्त पकड़ ले। और तुम उस वक्त अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में फरमाया ना, अमिन तुम मंसिस समाया सिफा बिकुम अल्लाह, तुम्हें अल्लाह चाहे तुम इससे बेखौफ हो गए तो वो जो आसमान पे तुम्हें जमीन में दसा दे, आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। तुम आज अगर जमीन पे अच्छे भले चल रहे हो ना तो पता है किस वजह से, वो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, वो तुम्हें पकड़ता नहीं इसलिए, अन्ना ये बात नहीं है कि इंसान अपनी किसी ताकत की वजह से चल फिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ का तो आलम ये होता था कि तेज आंधी भी चलती थी ना तो आपका चेहरा जर्द हो जाता था, दौड़ते थे नमाज की तरफ। अल्लाह के महबूब बंदे हैं और आपके होते हुए तो अजाब का वादा किया गया कि अजाब नहीं आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होंगे अजाब नहीं आना, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खौफ ज्यादा होते थे। और आज हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें, हम सब लोग अल्लाह की पकड़ से बेखौफ बैठे हैं, चाहे हमारे काम कितने ही बुरे हों हमें ये नहीं डर लगता कि कोई पकड़ भी आ सकती, हालांकि अगर वो पकड़ ले तो हक है, इंसाफ है, जुल्म नहीं है जो कुछ आज हो रहा है, लेकिन हर एक समझता है कि बस कुछ भी नहीं होना, सब ठीक है। नाफरमानी करके भी बेखौफ है, आओ या नंबर 4 चीज, या खुदहुम अला तखव्वुफ, या वो पकड़ ले तुमको खौफ की हालत में, ये 4th सिनेरियो हो सकता है, यानी तुम्हें ऐसी हालत में पकड़ ले जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कुछ कुछ होने वाला है। अच्छा, अगर एक्सपेक्ट करता है इंसान के कुछ होने वाला तो क्या करता है, उसके लिए तैयारियां कर लेता है, बड़े अपने ये बार बार टीवी पे आ रहा है जी, ये आ रहा है तूफान, ये आ रहा है, हमारे यहाँ पे वो सैंडी आया था, यानी इतना शोर मचा हुआ, सारा कुछ बताया, इतने अलर्ट, इतने कुछ है, लेकिन कर क्या सके, उसके सामने बंद बांध सके, कुछ कर सके, कुछ भी नहीं। लुधियाना में आ गया हरिकेन, वहां पे क्या कर सके, कुछ भी नहीं। तो चाहे तुम अलर्ट हो, चाहे तुम जानते हो, चाहे तुम अपने आप को रेडी कर लो, यानी बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ, होशियार हो जाओ, बिल्कुल तुम्हें पता हो कि आ रही है पकड़, फिर भी तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, फिर भी तुम कुछ रोक नहीं सकते। जिसमें तुम्हें तुम पहली वाली जो सिचुएशंस है ना, वो तीनों सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो गफलत में इंसान ठीक है बैठा बैठा वो जमीन फट गई या जलजला आ गया, अंदर चला गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि वहां से आया, तुम्हें शऊर ही नहीं था, वो भी गफलत की हालत में। तीसरी है, वो भी गफलत है कि चल फिर रहे हैं, कोई पता ही नहीं और एकदम आ गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं तीनों सिचुएशन में ठीक है तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें पता चल भी जाए, अगर तुम अलर्ट हो भी, अगर तुम होशियार हो भी, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इतने बेबस हो। मुसीबत आने के लिए तुमने पूरा इंतजाम भी कर लिया है, इसके बावजूद कोई बच नहीं सकता जब अल्लाह की पकड़ आ जाए। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, लेकिन बात यह है कि बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफकत वाला है और रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर, इसीलिए मोहलत दिए जाता है, मोहलत दिए जाता है, जानता है कि जो नाफरमानी है लोगों की, फिर भी वो छोड़े हुए लोगों को, हालांकि वो देखता है लोग अपने माल, अपनी ताकत, अपने इल्म, अपने इसके ऊपर इतना गुरूर करते हैं, अल्लाह के अहकामात को झुठलाते हैं, ये क्या क्या नाफरमानियां हो रही हैं दिन रात, पर वो चाहे तो कुछ भी बाकी ना रहे, लेकिन वो रऊफ और रहीम है। और राफत क्या होती है, शफकत, जैसे बाप को अपने बच्चे के साथ जो शफकत होती है ना, उसको राफत कहते हैं। अल्लाह अकबर, इतने बात कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, एक आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कबीरा गुनाह कौन से हैं, फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाना और अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो जाना, ये कबीरा गुनाहों में बहुत बड़ा गुनाह है। बेखौफ हो जाना कि बस हमें को डर ही नहीं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना, मायूस हो जाना, ये भी एक कबीरा गुना है। लोग इस चीज को नहीं समझते कि मायूसी भी कबीरा गुना, लेकिन अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो जाना भी कबीरा गुनाहों में से है। कभी बेखौफ ना हो, हमेशा डरते रहे। अवलम यरौ इला मा खलकल्लाहु मिन शैइन, अच्छा फिर अल्लाह ताला ने देखो अब कायनात को दिखाया, अगर आपने इसके जरा गौर तो करो, इतनी नाफरमानियां करते हो लेकिन तुमने देखा, क्या तुम देखते नहीं हो, कभी गौर फिक्र किया है, इला मा खलक अल्लाहु मिन शैइन, तरफ उसके जो पैदा किया अल्लाह ने, किसी भी चीज को, किस चीज को भी अल्लाह ने पैदा किया, कभी तुमने गौर किया है, यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइली, उसके साये गिरते हैं, साये झुकते हैं दाएं और बाएं, ये साये क्यों झुक रहे हैं दाएं और बाएं, नेक्स्ट टाइम साये को इस नजर से भी देखिएगा, आज तक हम सायों के नीचे गाड़ियां खड़ी करते हैं, साये के नीचे नीचे चलते हैं, लेकिन अब से ये सोचना है कि ये क्या कर रहे हैं, सुजदा लिल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा करते हुए अल्लाह के आगे, वहुम दाखिरून, और वो आजी करने वाले हैं, अपने आप को जलील करते हैं, अपने आप को ह्यूमिलिएट करते हैं, नीचा करते हैं अपने आप को अल्लाह के सामने, कितने हम्बल है ये, और दिखाते हैं कि हम अल्लाह तेरे आगे झुके हुए हैं, सजदा नाम ही आजी का है, ठीक है, और वो खुद नहीं झुक सकता, दरख्त है वो खुद नहीं झुक सकता, पहाड़ है इतना बड़ा पहाड़ है, खुद नहीं झुक सकता क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन उनके साए जो गिर रहे हैं वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो सजदा करते हैं अल्लाह को। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के आगे सजदा है। और इनका जो दाएं से बाएं जाना है, अब आप देखें अगर आप वो जैसे कभी कभी वो दिखाते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उसको, वैसे तो हमें शायद इतना रियलाइज नहीं होता सजदा सॉरी साया जो है ना वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे उसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें आप तो ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज नीचे गई है पूरी जमीन पे जाके झुक गई, फिर उसके बाद ऊपर उठना शुरू हुई, फिर साया कम होने लगता है ना, फिर जैसे हम सजदे में जाते हैं हम ऐसे 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 ऐसा ऐसा नीचे गए फिर जमीन पे पूरे जम गए फिर उसके बाद हम ऊपर उठे, तो ये हमारा सजदा है। और इनका सजदा क्या है, इनका सायों की सूरत में सजदा है कि साया ऐसे जा रहा है लंबा हो रहा है लंबा हो रहा है लंबा हो रहा है नीचे चला गया पूरा साया हो गया, फिर उसके बाद वापस जाने शुरू हो, जैसे कोई उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है सजदे से। इतनी खूबसूरत पिक्चर है ना ये, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए अगर आपको साये की ऐसी चीज मिल जाए कि जो कैसे वो उसकी उसका बढ़ना और उसका घटना होता है, तो बिल्कुल आपको ऐसे पिक्चर लगेगी जैसे उसको सजदा कर रहा है और उठ रहा है। अल्लाहु अकबर। तो ये भी साया, साया भी यानी उन चीजों का, ये भी सजदा करने वाला है, ये भी सजदा कर रहा है। तो इंसान जब साये तक हर चीज के सजदा कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं अल्लाह के आगे झुकता, तू क्यों अकड़ता है अल्लाह के आगे कि कभी उसके जो पैगंबर हैं भेजे हुए उनके आगे अकड़ रहा है, कभी उसकी अहकामात के आगे अकड़ रहा है। सजदा जो है ना, एक तो मैंने आपको बताया था सजदा इबादत का हिस्सा है, जैसे आप ये जैसे साया नीचे गया ऊपर आया ये सजदा है। और दूसरा सजदे का माना दो किस्म का उलमा कहते हैं सजदा होता है, एक ये वाला सजदा जो मैंने आपको बताया फिजिकली, दूसरा सजदे का माना होता है इताअत ओबीडियंस। तो सब चीजें ओबीडियंस कर रही है, फरमाया मा खलकल्लाहु मिन शैइन, सब चीजें ओबीडियंस कर रही है। और आगे भी देखे वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब चीजें सजदा करें, सब चीजें इताअत करें, मिन दाब्बतिन, कोई भी जानदार, हालांकि इसको अकल भी नहीं है जानदारों को हैवानों को इनको अकल भी नहीं है, फिर भी वो अल्लाह की इताअत करते हुए उसको सजदा रेज़ है। बकरी भी है तो सर को झुकाती है जिस वक्त खाना खा रही होती है, और मलाइका फरिश्ते भी सजदा करते हैं, रिश्तों की भी तस्बीह है, उनका भी सजदा है। और हुआ हुम ला यस्तकबिरून, और वो तकबर नहीं करते, इतनी ताकतवर मखलूक होके भी उनके अंदर तकबर नहीं है कि वो कहें कि हमने नहीं सजदा करना, हम तो खुद इतने ताकतवर हैं। इसलिए हसन बसरी ने फरमाया ए इब्ने आदम तेरा साया अल्लाह को सजदा करता है और तू अल्लाह को सजदा नहीं करता, ये तेरा बहुत बुरा फेल है। तेरा साया तो देख अल्लाह के आगे गिर गिर जा रहा है, चाहे वो काफिर भी क्यों ना हो उसका भी साया अल्लाह के आगे झुक रहा है, लेकिन तू नहीं झुकता अल्लाह के आगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह झुकने वाला बना दे अपने आगे, झुकने वाला हमेशा रखना अपने आगे, हम झुके ही रहे तेरे आगे। तो अल्लाह ताला ने कायनात की इन सारी चीजों को दिखा के इंसान को सबक दिया, ये साये भी हमें सबक सिखा रहे हैं। कभी आपने इस नजर से देखा है साये को, कभी इस नजर से देखा हो कि ये साया सजदा कर रहा है, मुझे कितनी जरूरत है मैं अपने रब को सजदा करूं, उनका साया ही उनका सजदा है। तुम भी झुक जाओ, तुम्हें भी सजदा करना, बिछ जाओ अल्लाह के आगे। दाखिरून में मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आजी नहीं है, अपनी जिल्लत अपने आप को बिछा देना, अपने आप को शो करना कि मैं पावरलेस हूं, मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं है, ये है दाखिर होना। अल्लाह अकबर। तो जिसको जितना इल्म होगा, जितनी जिसको अल्लाह की पहचान होगी ना इंसानों में, उतना ही ज्यादा वो झुकता चला जाएगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे जमीन और इनका जल चरिंद परिंद और इनका तो सजदा हो गया, अब वो पता है सूरज भी अल्लाह के आगे सजदा करता है। ये हदीस में है कि सूरज भी रोजाना دیکھیں یہ جو غروب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے جا کے سجدہ کرتا ہے. اس کی کیا کیفیت ہے یہ نہیں ہم جانتے, ابھی اس کے اوپر نہیں بحث ہم نے کرنی کہ کیسے کرتا ہے وہ تو ادھر نکل آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. نہیں, ہمیں جب حدیث میں بتا دیا گیا سمعنا واطعنا, سمجھ آئے نہ آئے, میری تو کل اتنی آئی نہیں کہ سمجھ آ سکے کوئی بات, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بات سچی ہے. تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے اور نکلنے سے پہلے بھی اللہ سے اجازت لیتا ہے, اللہ نکلو ہاں, اللہ اتنا اطاعت گزار. اور دیکھیں ایک دن چھٹی نہیں کرتا, ایک دن کی نہیں چھٹی, ایک دن کی بھی اس کا ڈیلے نہیں ہے, لیٹ نہیں ہے, اتنا اطاعت گزارا. دیکھیں سجدے میں دونوں چیزیں آ گئی نا, یہ سب چیزیں ویسے بھی سجدہ کر رہی ہیں اور اطاعت میں بھی کتنی آ گئی. اور انسان تم ہی اطاعت میں پیچھے, سمندر کی موجیں دیکھیں, ان سے کیا ہے, یہ اپنی نماز ادا کرتی ہیں, یہ اپنے سجدے کریں گے, بچ بچ جاتی ہیں, ایسے ایسے آ کے گرتی ہیں, چھوٹا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. داخل ان میں یہ نا کہ چھوٹا کر لینا اپنے آپ کو کہ میں کچھ نہیں ہوں. اور ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے, کتنی ایسی ایسی باتیں سنتی ہوں میں تو میرا دل اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو پتا بھی ہے یہ کس رب کے بارے میں بول رہے ہیں, اپنی زبانیں کھول رہے ہیں, وہ پوری کائنات اس کے آگے سجدے میں جھکی ہوئی ہے. تم کیا چیز ہو؟ اور اللہ نے دھابا اور ملائکہ کا کیوں کہا؟ آپ نے سوچا ایک طرف دھابا اور ایک طرف ملائکہ, ان دو کا کیوں مینشن کیا اور کیوں نہیں کسی کا مینشن کیا؟ اس لیے کہ دھابا سب سے نچلی چیز ہے. دیکھیے جانور ہیں ان کو تو کوئی بس نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ, اور ملائکہ سب سے ٹاپ کی چیز ہے, سب سے نیچی بھی چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور سب سے ٹاپ والے بھی اللہ کے آگے جھکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا علی عمران میں, وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کو اپنی زبان میں ہم کریں اس کا ترجمہ, اسلام لے آیا جو بھی آسمانوں میں اور زمین, سب نے سبمٹ کر دیا, سب نے اپنی مرضیاں چھوڑ کے اللہ کے آگے جھک گئے, ساری کائنات مسلمان ہو گئی ہے, ساری کائنات زمین آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب مسلمان ہو گئے. جیسا جس وقت جو اللہ کہتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں, ساری کائنات وہ کر رہی ہے, ایک چیز بھی دکھائیں جو نافرمانی کرتی ہے, اس کے سوا کرتی ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا, چاہے وہ اتنا بڑا سورج ہے یا چھوٹا سا کیڑا ہے. 12 لاکھ گنا بڑا ہے یہ ہماری زمین سے, 12 لاکھ گنا, اور ہماری زمین پھر سوچے جس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں, جو ہماری نظر میں اتنی بڑی چیز ہے, سورج اتنا بڑا ہو کے اور اتنی اطاعت کر رہا ہے, ایک ہی ٹائم پہ, ٹائم کی تو جو پابندی ہے سو ہے, ایک ہی راستہ ہے اس کا. کسی دن آپ نہیں دیکھیں گے کہ آج ہی سورج دیکھتے ہیں آج کہاں سے نکلتا ہے, ساؤتھ سے نکلتا ہے کہ نارتھ سے کہ ویسٹ سے کہ ایسٹ سے, نہیں, نہ دائیں ہوتا ہے تو نہ بائیں, اور سپیڈ بھی اتنی اس نے رکھنی, یعنی کہ آج سورج جو ہے نا 3 گھنٹے میں ہی غروب ہو گیا, آج تیز چلا گیا, آج کو جلدی تھی, اور آج یہ بڑا تھکا ہوا ہے, آج تو 20 گھنٹے ہو گئے ابھی تک مغرب میں پہنچا ہی نہیں. سوچو یہ کتنی بڑی طاقت کوئی ہوگی اس کے پیچھے جو اس کو ایسے چلا رہی ہے. پھر اس میں جو آگ جل رہی ہے, کتنی آگ ہے جو اس میں جل رہی ہے, اور وہ جلتی جا رہی ہے, نہ اس کے اندر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی آگ دہکائے, نہ کوئی اس کی آگ کو گرم رکھنے والا ہے, کون ہے جو, کوئی طاقت تو ہے نا پیچھے, تو پھر سوچتے نہیں ہو, تو دیکھتے نہیں ہو فرما برداری ان سب کی, سارا جہان مسلمان ہو گیا اور تم ہی پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے, اور تم ہی کہتے ہو کہ میرے سے نہیں فرما برداری ہوتی, میں نہیں سبمٹ کر سکتی, مجھے اپنی مرضی کرنی ہے, میری مرضی بڑی ہے. ہاں یہ تو نہیں اپنی مرضیاں کرتے, اگر سورج بھی کرنے لگتا, چاند بھی, زمین بھی اپنی مرضی گھومتی پھرتی سیر کے لیے نکل جاتی کہیں, تو کیا کرتے ہم؟ اور یہ بھی نہیں ہم سوچتے اتنی بڑی زمین, اتنے بڑے بڑے ستارے, سیارے, وہ سجدہ کیے ہیں, وہ اطاعت کر رہے ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہیں, نافرمانی کرتے ہوئے کہ ہم ڈر جائیں اور سوچیں کہ اللہ کیا ہوگا اگر میں نافرمانی کر رہی ہوں, پتہ نہیں اللہ کہیں کہیں سے کوئی عذاب نہ آ جائے, کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے, میں یہ نہیں سوچتی. اللہ اکبر, انسان کتنا نہ ڈر ہے, کتنا نہ ڈر ہے, کتنا بے خوف ہوا ہوا ہے, اور اللہ یہی خوف چاہتا ہے کہ تمہارے اندر آ جائے, تمہارے اندر اطاعت آ جائے, تم جھک جاؤ اللہ کے آگے. देखो सब झुक गए हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। हम तो सज्जे का हाल ही है कि जरा जरा सी बात के ऊपर कोशिश करते हैं कि आज ना ही नमाज पढ़नी पड़े, ना ही कुछ करना पड़े तो अच्छा है, ना ही उठना पड़े, बहाने बहाने से आज थकावट बहुत हो गई, आज ये बहुत हो गया। देखो वो तो नहीं इस तरह करते कि वो सज्जे से पीछे हटे। अल्लाहु अकबर। और वो कैसे फरिश्ते हैं अल्लाह के, जो फरमाया या खाफून और अब्बा हूं मिन फौकहिम, वो डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है, अल्लाह की पकड़ से फिर भी डरते रहते हैं, हालांकि हर वक्त सज्जे में पड़े हुए हैं। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आसमान चिचरा रहा है, क्या तुम्हें इसकी चिचराहट की आवाज आती है जो मैं सुन रहा हूँ, तुम सुनते हो आसमान चिचरा रहा है, उसको हक क्या कि वो चिचराए, यानी बोझ की वजह से जैसे कोई चीज स्क्वीक करने लगती है इस तरह कर रहा है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आसमानों में चार उंगली जगह भी ऐसी नहीं है जहां कोई फरिश्ता सजदे में सर रखे हुए ना हो। खुदा की कसम अगर तुम वो जानो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा और बिस्तरों पर औरतों से लज्जत ना पा सकते और मैदानों में निकल जाते और अपने गुनाहों की अल्लाह से मगफिरत मांगते। यही सुन के हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं काश मैं दरख्त होता और लोग इसको काट डालते। इतने फरमा बरदार हैं फरिश्ते कि अल्लाह से इतने डर के रहते हैं कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है, मैंने हदीस आपको पहले भी बताई थी, तो क्या हो जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं और सर नहीं उठाते जब तक अल्लाह ताला का वो हुक्म जो है ना वो ओवर नहीं हो जाए, वो कमांड आई है, सर उस वक्त उठाते हैं जब हुक्म ओवर हो जाता है और फिर एक दूसरे से कहते हैं क्या हुक्म दिया अल्लाह ने, और फिर खुद ही जवाब देते जो फरमाया हक फरमाया, हक है जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया। इतनी बड़ी मखलूक होके 600 पार थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला ने जिनके बारे में फरमाया जी कुव्वत है, कुव्वत वाला फरिश्ता है, इतने इतने बड़े फरिश्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था तो बेहोश हो गए थे, इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं और कोई उससे भी ज्यादा बड़े बड़े फरिश्ते हैं, लेकिन कैसे बाअदब है, इसलिए कि जानते हैं ना अल्लाह को, हमें जैसे को पता ही कुछ नहीं है तो इसीलिए हमारे वो इताअत वो फरमा बरदारी वो सजदे हमारे हैं ही नहीं, उनको पता है ना वो अल्लाह के करीब है। इसलिए मैंने कहा जो जितना ज्यादा इल्म रखेगा उतना ही वो झुकता चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जिनके कंधे अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं उनके कंधे। और फरमाया अर्श के उठाने वाले फरिश्तों की आंखों से नहरों की तरह आंसू बहते हैं और जब वो सर ऊपर उठाते हैं तो कहते हैं सुबहाना सुबहानका तू पाक है और जैसे तुझसे डरने का हक है ऐसा डरा नहीं जाता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे नाम से झूठी कसमें खाते हैं वो ये बात नहीं जानते। ये भी एक हदीस है, यानी दुनिया में लोग मेरे नाम की झूठी कसमें खाते हैं वो नहीं डरते मेरे से, अलग फरिश्ते वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह जैसे तुझसे डरने का हक है वैसे हम नहीं डर पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मेराज की रात जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा, वो अल्लाह के डर की वजह से पुरानी मश्क की तरह हो गए, जैसे लेदर बैग होता है पुराना हो जाए तो ऐसे सुकड़ सा जाता है ना, रिंकल्स आ जाते हैं उसके ऊपर, ऐसे हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। यजीद रखाशी ने कहा कि अर्श के गिर्द अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनके आंसू कयामत तक नहरों की तरह चलेंगे, वो इस तरह अल्लाह के डर से लरजते हैं कि जैसे हवा इनको उड़ा के ले जाएगी। ये फरिश्तों की बात हो रही, कोई चूंटियों की नहीं हो रही, इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों तुम क्यों खौफ करते हो जबकि तुम मेरे पास हो, तो वो कहते हैं ऐ रब जितना हम तेरी इज्जत और अजमत को जानते हैं अगर जमीन वाले जान ले तो खाना पीना छोड़ दें और बिस्तरों पे ना लेटे और जंगलों की तरफ निकल जाए और बैलों की तरह डकारते रहे, यानी ये फरियादें करें चीखे मारे अगर उनको इस तरह पता चल जाए जैसे हम तुझे जानते हैं कि अल्लाह जात क्या है, वो जात क्या है अगर इनको पता चल जाए तो। हालांकि फरिश्ते आप देखें वो मखलूक हैं, کہ جو نافرمانی سے پاک ہے وہ معصوم ہے. وہ یہاں پہ کیا آیا, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. نافرمانی ان کے اندر ہے ہی نہیں, پھر بھی وہ اتنا ڈرتے ہیں. اور جو نافرمانیاں کر کر کے سارا دن گھومتے ہیں اور رات کو آرام سے سوتے ہیں پیر لمبے کر کے, ان کو نہیں کوئی ڈر, کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ذات کیا جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. محمد بن منقدر نے کہا کہ جب جہنم پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل لرزنے لگے, پھر جب آدم پیدا ہوئے تو ان کے دلوں کو سکون آیا کہ اچھا یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے. اور بیان کیا گیا کہ جب ابلیس کی کارستانی ظاہر ہوئی نا تو جبرائیل اور میکائیل رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ رونا کیسا ہے, تو انہوں نے عرض کیا اے رب ہم تیری پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں, ہم تیری پکڑ سے بے خوف نہیں. یعنی ان کو ڈر لگا کہ اس نے نافرمانی کر دی, اللہ کہیں کوئی کسی کوئی ایسے مقام پہ نہ پہنچے, وہ تو انہی کے ساتھ رہتا تھا نا. اللہ ہم ڈرتے ہیں اور ہم نہیں ڈرتے, عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ تکبر آ رہا ہے, اگر نیکی کوئی کام کر لیا تو اور سر میں بالکل غرور اور یہ ہو گیا اور زیادہ گردن اکڑ گئی, ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں. وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ ابلیس کا یہ حال ہوا تو وہ ڈرنے لگے, کہتے ہم اس سے بھی خوف نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اس وقت عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے سوال کیا ہے جبرائیل کیا بات ہے تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے, فکر کے اور غم کے آثار تھے ان کے چہرے پہ. عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دھونکنے کا حکم دیا, یعنی اور بھڑکاؤ اس کو, اور میں اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں, اس لیے اس منظر کے خوف سے میری یہ حالت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل اس آگ کا منظر بیان کرو, کیسی ہے وہ آگ, کیونکہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہم تو نہیں دیکھ سکتے. جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کا منظر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو 1000 سال تک بھڑکایا جائے, تو وہ جو ریڈ ہاٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہو گئی, سفید ہو گئی. پھر ارشاد ہوا کہ 1000 سال تک اسے اور بھڑکایا جائے, پھر وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اور بھڑکایا جائے تو پھر وہ سیاہ ہو گئی. اب اس کی یہ حالت ہے, نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں نہ اس کے شولے بجھتے ہیں. خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں. اور خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, اگر جہنم کا ایک داروغا بھی زمین کی طرف زمین والوں کی طرف ظاہر ہو کے جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے زمین والے مر جائیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, اگر جہنم کی کسی زنجیر کا ایک حلقہ, ایک اس کا وہ جو سکل ہوتا ہے, دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ یعنی پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکے. جب جبرائیل علیہ السلام نے اتنا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے, فرمایا بس کرو بس کرو, نہیں تاب نہیں لا سکے. فرمایا میرا دل پاش پاش ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام خود بھی رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم بھی روتے ہو, حالانکہ تمہارا مقام تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں کیوں نہ روؤں, میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں, ممکن ہے کہ میرا مرتبہ اللہ کے علم میں اس مرتبے کے سوا ہو جو اب میرا مرتبہ ہے. یعنی مجھے کیا پتا اللہ کے نزدیک میرا اس وقت کیا مقام ہے, اس وقت کیا ہے, ہو سکتا ہے میں کچھ سوچ رہا ہوں لیکن اللہ کے نزدیک اس وقت کیا مقام ہے مجھے اب معلوم نہیں, کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے جیسے ابلیس کا لیا گیا حالانکہ وہ فرشتوں کے ساتھ, اور میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرے جس طرح ہاروت اور ماروت کی آزمائش کی گئی. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں روتے رہے, یہاں تک کہ ان دونوں کی کو آواز دی گئی اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن دے دیا. उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आसमान की तरफ चढ़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल के अंसार के पास से गुजरे और उनको हंसते हुए देखा तो फरमाया, तुम लोग हंस रहे हो और तुम्हारे पीछे जहन्नम है जो मैं जानता हूँ, अगर तुम जान लो तो हंसो कम और रो ज्यादा। ये तबरानी में है हदीस। मुझे किसी ने कहा, किसी ने मुझे आके कहा कि कोई किसी की मैसेज मुझे दिया कि वो इतनी जल्दी रोना क्यों शुरू हो जाती है। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मगर जब ऐसी आयत इंसान के सामने आए और जब हम ये पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम कितना डरा करते थे और वो बेखौफ नहीं हुए, तो हम कैसे बेखौफ हो जाए, हम कैसे अमन में रह सकते हैं। हर इस दुनिया में रो लोगे ना अल्लाह के आगे और झुक जाओगे तो अल्लाह ताला आखरत के रोने से बचा लेगा। और जो इस दुनिया में बेखौफ हुआ अल्लाह उसको वहां खौफ जता करेगा। ये हदीस है, अल्लाह ताला दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करता। जो यहाँ खौफ जदा हो गया ना अल्लाह से, जो यहाँ रोया अल्लाह वहां उसको हंसाएगा, जो यहाँ खौफ जदा हो गया अल्लाह वहां उसको बेखौफ कर देगा, वहां पे अमन दे देगा। लेकिन जो यहाँ पे बेखौफ रहते हैं उनको डर नहीं लगता, तो उनके लिए वहां पे खौफ ही खौफ है, क्योंकि फिर वो चीजें उनके सामने आएंगी जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।